Sanță de gii, iar se gherna. Vasuri me, is room me, ye satsang ka anand sabhi jahan le rahe hain. Aur wo bhav bhi man me, yehi sabhi ke, ki is samay chahte, to sab ye prakriti ka bhi anand le sakte the. Ya kuch aur bhi ghoom ke aa sakte the. Par aise sthan pe aake bhi satsang ko hi prathamikta jo sabhi de rahe hain bhav man ke vahi unche suche bhav ki ye nirakar ye santmati wale sant ye satsang roop ye jitna mile ye jeevan ko badalne wala ek ek vachan wo jeevan mein utre ye nirakar ke darshan is brahm gyan wala aur phir ye nirakar ko man mein tika ke भक्ति को ऊंचे करना और अक्सर फिर वो भक्तिमय जीवन एक हरे का हर समय का बनकर और वहीं फिर ये एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी जहां बात आती है कि अब जब भक्त बन गए हैं तो जीवन में फिर क्या करना है वो फिर आधार अपना निराकार पे परमात्मा पे ही रखना है या फिर यही दुनियावी चाल चलते रहना है क्योंकि अगर एक ऊपर के तौर पे देखें तो जो परमात्मा से वाकिफ नहीं है उसने भी अपने दिनचर्या में वही खाना पीना सोना जागना करना है और महात्माओं संतों ने भी वही कार्य करने हैं क्योंकि शरीर तो सभी के सेम है वो एक्टिविटी शरीर का बिल्कुल सेम है तो फिर ये क्या है जो ब्रह्म ज्ञान या निराकार मिलने के बाद भी एक संसार में रहते हुए संसार से एक अलग जीवन जीना है एक एकांत में मौन होके एक अपने आप को एक अलग तरह से नहीं गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी और ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कर्तव्य इतने गहरे कि जहाँ एक संत है सबसे पहले वहाँ समाज का हिस्सा भी और जहाँ समाज का हिस्सा है तो जहाँ समाज के बने हुए नियमों को भी पालन करना है पर अक्सर समाज में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एक बिल्कुल अच्छी नहीं भी होती तो क्या अपनाना है क्या छोड़ना है अक्सर एक संत होने के बावजूद क्योंकि समाज में रह रहे होते हैं वो समाजवादी दृष्टि एक अपना मन का नज़रिया एक आइडियोलॉजी भी वैसी बन जाती है जिससे फिर ब्रेक करना आसान अपने लिए भी नहीं लगता कि वैसे हम बोलते हैं हम इस विशाल परमात्मा के साथ तो जुड़ गए हैं पर सोच विचार विशाल नहीं कर पाते फिर वही बात कि जो समाज में जैसे अगर सभी कह रहे हैं कि कुछ नियम हैं इस उम्र के हो तो इतनी पढ़ाई होनी चाहिए इस नियम इस उम्र के हो तो फिर ये विवाह करना चाहिए इस नियम इस उम्र तो हर एक के पड़ाव अपने अपने और वही कहीं संत भी फिर मन विशाल करने की बजाय वो संकीर्ण टाइमलाइंस से जुड़ जाते हैं कि एक तुलना मन में आती है कि ये व्यक्ति इस उम्र का ये उपलब्धि हो जानी चाहिए थी और वही फिर दुनिया से जुड़े तनाव और ये कंपैरिजंस ये सब आने लगते हैं जबकि संतों का काम तो समाज का उद्धार है पूरे संसार का उद्धार है तो ये संकीर्ण सोचों को मन पे हावी क्यों होने देना अक्सर सत्संग में भी आज भी जिक्र हुआ कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक जुड़ी रहे तो चाहे वो भाव ये है कि हर कोई इस निराकार से जुड़े पर कहीं ना कहीं हम वो फिर सामाजिक दृष्टि में वो एक सीट डाल रहे हैं कि पीढ़ी का मतलब फिर हमें भी दुनिया के उस दायरे में रहना है किसी को इच्छा नहीं भी है विवाह की वो भी करे आगे बच्चे भी करे फिर वो पीढ़ी बने एक जीन कैरी ऑन हो तो कैसे ये थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं अगर निराकार से जोड़े हैं तो बात वही समझे कि ये समाज की चीज़ों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है पर सही कारण क्या है अगर अपना मन करता है जो करने का जो सही लगता है और वो सही नापने का गलत नापने का पैमाना क्या फिर वही ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि कि सिर्फ अंधाधुंध भेड़ चाल कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखाता एक रोशनी, एक अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, एक अपनी सही दिशा खुद बनाना, क्योंकि भक्ति भी हरेक की बहुत ही यूनिक है। ये रिश्ता हरेक का इस परमात्मा से जुड़ने का, तो वो सिर्फ एक नियमित रूप अगर बना लिया कि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं चलो सत्संग, तो इसलिए सत्संग नहीं आना है। अपने अंदर से अगर आवाज है कि हाँ ये रूह की खुराक, ये निराकार, इससे एकमेक होना है, संतों के चरण रज लेनी है, तो वो सही कारण होगा सत्संग आने का, कि सत्संग आएंगे सिर्फ शरीर को नहीं बिठाना, एक सोच को, एक दिमाग को, एक काम को भी ओपन रख के सारे वचनों को सिर्फ सुनकर नहीं मन में बिठाना है। और वो मन में बैठते ही वो जीवन क्या सुधार एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होगा, एक बाय प्रोडक्ट होगा। तो अक्सर हम खुद भी ये विषय के साथ जुड़कर अपने आप को इतने नियमबद्ध बना लेते हैं कि एक मुंह से तो कहते हैं कि अब ये बेअंत मिल गया है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में भी है, और वहीं फिर इस बेअंत को अपने हिसाब से सीमित कर देते हैं कि कहीं किसी ने किसी समय में कुछ लिख दिया कि ये परमात्मा ऐसा है, ये अगर बक्षणहार है, ये कुछ भी गुण के साथ जोड़ दें तो फिर वो इतना ज़्यादा उसको पकड़ के ही बैठ जाते हैं कि अक्सर अगर फिर समय के हिसाब से कोई तब्दीली है तब समाज की रिक्वायरमेंट कुछ और, अब कुछ और, तो फिर वही सवाल उठते हैं कि ये तो बक्षणहारा और अब ये अगर कोई चीज़ है उसको फिर वो बख्शने वाली बात नहीं, तो फिर वहीं क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि ये तो परिभाषा एक तालमेल नहीं बैठ रहा, ये एक्यूरेट नहीं लग रहा। तो बात वही कि ये निराकार जो है इसके साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही फिर जीवन अपना हम सोच भी जहाँ एक सही सोच बनाकर जिएंगे, अपने कारण खुद बनाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से किसी ने कुछ सिखा पढ़ा दिया। जिस तरह उदाहरण हम मानवीय गुणों का भी लेते हैं कि अक्सर स्कूल से ही सिखाया जाता है कि व्यवहार मीठा बनाओ, अपने अंदर नम्रता लाओ, एक बेसिक कर्टसी, थैंक यू, सॉरी, ये सब इतना बचपन से ही चाहे सिखा देते हैं, फिर भी एक जीवन में हमें वो भाव मन के तब तक पूरी तरह से वो समर्पित भाव नहीं आता जब तक ये खुद मानवीय गुणों का सिर्फ उच्चारण नहीं करना, ये व्यवहार में जबरदस्ती ना लाए पर खुद बने। प्यार करना नहीं, प्यार पहले बनना है। एक बार प्यार बन जाएंगे तो फिर वो शरीर, वो सोच, वो कर्म, वो बोल उसी दिशा में जाएंगे। ये विशाल निराकार से जुड़कर फिर खुद भी हम इतने विशाल होंगे कि किसी को जज नहीं करेंगे, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वरना अक्सर संसार में प्यार का ये लेबल देके बहुत ही एक हिंसा हो जाती है कि किसी घर के सदस्य को ही उदाहरण में देखें तो ये एक फोर्स आ जाता है कि अगर मुझसे प्यार है तो ये काम करना ही होगा। तो वहाँ कहाँ गया प्यार, ये तो कोई एक ऐसी बात है जो जबरदस्ती कराई जा रही है। अगर मुझसे प्यार है तो फिर ये नहीं ये होगा, अगर प्यार है तो फिर एक डोमिनेशन है कि ये भाव मन के अपनी इच्छा छोड़ो, दूसरे की सोच, दूसरे के भाव अपनाओ। तो ये तो कभी परिभाषा प्यार की रही ही नहीं, क्योंकि प्यार ने तो हमेशा एक समर्पण सिखाया है, चाहे वो संसार के लिए हो, परमात्मा के लिए हो। जब ये सौदा प्यार का इस परमात्मा के लिए, ऐसा नहीं रहता कि शरीर में तकलीफ है, कोई जीवन कहीं रुक सा गया है, एक परमात्मा ये कुछ ठीक से जीवन नहीं चला रहा, एक जीवन जिस तरह, जिस टाइमलाइन से जैसा चलना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा, वही मन फिर ये जहाँ परमात्मा को भी कोसने के लिए तैयार, और वही फिर इतने सवाल मन में कि ये अगर परमात्मा ने जीवन दिया है तो ठीक से क्यों नहीं हम जी पा रहे, एक अगर शारीरिक कमी अगर है, कोई कोई तकलीफ, कोई बीमारी, तुम भी फिर ये या तो भय से भक्ति अब शुरू कि ये तकलीफ दूर हो जाए, आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो जाए, तो या तो उस वजह से फिर परमात्मा का नाम जप रहे हैं, या फिर ये परमात्मा में वही कंप्लेन से शिकवे उस तरह का जीवन जी रहे हैं। जबकि भक्तों का तो बहुत ही सहज जीवन होता है। अगर परमात्मा ने शरीर के अंग ठीक रखे हैं तो भी मुबारक, नहीं रखे तो भी मुबारक, महल है तो भी मुबारक, झोपड़ी है तो भी मुबारक। बस बात वही कि हमें अपना प्रयास जो करना है एक संसार में ये जिम्मेवारियों पे लगकर, वो प्रयास जारी रखना है। फिर बात वही कि प्रयास का हम खुद ही एक वेस्टेड, एक अपना इंटरेस्ट ना बना लें कि अगर हम इस दिशा में यहाँ ये बीज लगाएंगे तो हमारे मुताबिक उतना ही पेड़ प्रफुल्लित होना चाहिए। नहीं, हमारा काम सिर्फ वो बीज लगा के एक पौधे में पानी डालना है, फिर इस परमात्मा पे है कि वो कितना प्रफुल्लित हो। तो बात वही कि हर एक से जहाँ एक जुड़ाव मन का रखना है, और वो मन का जुड़ाव इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी है, कि एक तरह का व्यवहार रखने से हम अच्छे इंसान बनेंगे, नहीं, वो अच्छा इंसान बनना वर्सेस एक स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हुए एक निरंकार से जुड़कर इंसानियत आ जानी, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि अच्छा इंसान तो फिर सिर्फ अगर हम उस तरह माने कि जो मन में किसी की मदद कर दे, किसी के लिए दिल पिघले, या फिर कुछ एक अच्छे गिनने वाले जो काम होते हैं वो भी दिन से रात में कर दें, ज़रूरतमंद के लिए सर्दी है तो कम्बल पहना दें, ऐसे तो गुण करते करते ये कहीं ना कहीं इन्हीं से बंध के मान लेते हैं कि जीवन में आए हैं तो अच्छाई ही कर रहे हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, उसकी मदद करके उसका सपोर्ट बन के उसको कम्फर्ट दे के। पर बात वही कि ये अच्छा इंसान बनकर भी ऐसी हरकत एक आदत करके भी मन में क्या है क्या नहीं, हम सत्संग भी आ सकते हैं पर क्या पता क्या कारण है, हम इसलिए क्या आ रहे हैं कि एक आसपास वाले हमें देखें, हमारी प्रशंसा करें, कि ये तो समय शुरू होने से पहले आ जाते हैं सत्संग और अंत में भी सारा वाइंड अप करके जाते हैं, या फिर कोई इस वजह से भी आ जाता है कि एक कनेक्शंस बनेंगे, कोई हमें जानकार मिलेंगे, तो वो भी सही कारण नहीं है। और कैसे फिर अपने जीवन में कारण ही सत्संग आने का एक छोड़ देते हैं कि वो सही रीज़न ना हो तो आने का भी कोई फायदा नहीं। और कैसे फिर एक इसके बिल्कुल अगर एक्सट्रीम बात की जाए तो अक्सर हम सत्संग से भी अपने भय को इतना जोड़ लेते हैं कि वो आज किसी कारणवश अगर सत्संग मिस हो गई तो ये क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये एक मन में उथल पुथल आ गई। तो बात वही कि सत्संग में आने का मन तो ये स्थिरता को प्राप्त करना है निराकार से जुड़ के। तो अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किसी कारण से अगर कभी सत्संग मिस भी हो रहा है तो हम वापस एंशियस होने लग गए कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज तो सत्संग नहीं कर पाए, या फिर कुछ और रीजंस। तो फिर ये सत्संग में आके भी हमने सही कारण से सत्संग नहीं करी, क्योंकि जैसे पानी का काम प्यास बुझाना है तो अगर वही हो गया कि एक बेसिक नेचर जो सत्संग से हमें मिलना था एक मन की प्यास बुझने का, तो अगर वही एक इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर एक आदि सत्संग किसी कारणवश ना पहुंच के भी अगर बेचैनी है तो भी वो सत्संग लाभदायक कहाँ ही हम कर पाए, जो ना सत्संग करने के समय में भी चिंता ही आ गई। तो कैसे अपने जीवन में हर किसी को जहाँ एक सेवा को भी करना है तो मदद की तरह नहीं, किसी को दिखावे रूप में नहीं, कुछ उसके पीछे ये कारण बना के नहीं कि सेवा करेंगे तो फल मिलेगा, एक बिल्कुल ही अपनी इच्छा खत्म करके हर एक को समर्पित होके ही एक सेवा सेवा होती है। एक सुमिरन भी फिर बात वही कि चाहे शब्द रूप तो ये है कि तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो, पर वो बात वही कि एक ये और एक सुमिरन रूप के मन में फिर अरदास भी उठती है कि निराकार अपने साथ ये जुड़ाव बनाए रखना, जो भी एक मन में इस समय एक रेलेवेंट उस समय की हमारी स्थिति होती है, अक्सर वो भी मन से फिर निराकार से बयान हो जाती है। एक फिर वो भाव और वही फिर एक बहुत ही नैरो एक फाइन लाइन होती है जो अरदास और इच्छा के बीच की होती है। अरदास जो है वो निष्काम है, स्वार्थ नहीं है उसमें, वो अपने लिए चाहे वो हरेक के लिए हो, वो किसी एक मतलब से जुड़ी नहीं है। और जहाँ इच्छाएं हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, या मेरी अपनी कमी कोई महसूस होगी जिसकी पूर्ति चाह रहे हैं, या अगर किसी और के लिए भी, तो बात वही कि जब तक सुमिरन में अरदास है वो कबूल है। जहाँ फिर लालच या किसी और वजह से कोई इच्छा आ रही है, वहाँ हमें खुद देखना है कि हम इस परमात्मा से भी फिर एक शॉर्ट टर्म चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, जो हो सकता है आज तो कमी का एहसास दे रही है वस्तु, मांग लिया मिल गए और मिलते ही लगे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर वो समय भी जहाँ हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते थे, उसको अपनी लालसाओं में इच्छाओं में वस्तुओं में एक परिस्थिति बदलने में ही समय लगवा दिया। एक उस तरह से फिर मन को जहाँ हम निराकार को और डीपली और बसा सकते थे, उस समय भी हमें अपनी बहुत ही सामाजिक या आर्थिक या घर के माहौल को लेके ऐसी ही एक शॉर्ट टर्म अरदास बन गई। तो बात वही कि कैसे जीवन में हमें जहाँ इस संसार में आए हैं अपने रोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। और सबसे पहले बात हुई कि सब बहुत अच्छी तरह ठीक से निभा सकते हैं, बस एक प्री रिक्विजिट ये निराकार का वास मन में हो, तो फिर मन चतुर चालाकियाँ नहीं करेगा। एक इंटेलिजेंस को भी हम पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे, एक इमोशंस भी, जहाँ एक अक्सर कहा तो जाता है कि ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये लालच ये भी और जोड़ते चले जाएं इसमें, कि ये बहुत ही हानि कर देते हैं। पर बात वही कि अगर इमोशंस फीलिंग्स ये एंगर हर कुछ है तो ये निराकार है, तो ये बहुत अच्छे से चैनलाइज होगा। जो उदाहरण भी कि अगर आग है उसको अगर हम सिंबॉलिकली एक क्रोध से भी जोड़ दें, तो देखें कि सिर्फ ये आग हमेशा क्रोध का काम अगर है, उसकी जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आग नहीं वहाँ खाना भी नहीं पक सकता। तो ये बस बात वही कि ये जहाँ अच्छे गुण हैं, ये बुरे गुणों को भी कैसे चैनलाइज करके कुछ अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है। जैसे अक्सर हम कुछ किसी को समझाना बुझाना चाहें, तो बात वही कि थोड़ा कभी एक स्ट्रिक्ट टोन भी लानी पड़ती है, कि एक प्यार से जो पहले कोशिश करके भी, फिर एक वो पनिशमेंट तो नहीं पर एक अपनी बात को सामने रखना और स्पष्टता से रखना, पूरी कन्विक्शन से रखना, तो चाहे वो एक निरादर वाली टोन नहीं बट एक थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन भी आ जाती है, वो क्यों, क्योंकि दूसरे की भलाई उससे हो जाएगी। तो बात वही कि इस तरह देखें कि सभी निराकार ने बनाया है, तो बस वो संतुलित चीज़ हो, वो सारे इमोशंस बुद्धि हर कुछ जो जीवन में हमें मिली है उनका सदुपयोग होता जाए, तो फिर कुछ बुरा नहीं है। एक अच्छाई की ओर जीना है, एक अच्छाई बनना है, इस निराकार को इतना मन में बसा लें कि फिर एक में कवस था कि ये निराकार और हम में वो फिर फर्क नहीं है, वो एक ही रूप है। और फिर ये चाहे सीमा एक शरीर तो बहुत ही सीमित हाइट चौड़ाई का है, पर जो निराकार अंदर भार है ये तो असीम है। फिर ये शरीर की सीमाएं होने के बावजूद असीम होना संभव हो जाता है। और ये पोटेंशियल हरेक में है कि इस निराकार को जान के इससे एक में खोकर इसी को जीते जी भी बनते रहें, इस शरीर में रह के भी, और शरीर समाप्त होने के बाद भी फिर ये निराकार में मिलना है, और यही मोक्ष है, यही सालवेशन है, यही मुक्ति है। तो जहाँ सिर्फ मौत की इंतजार नहीं करनी मुक्ति लेने के लिए, जीवन मुक्त होना है, हर पल निराकार को याद रखकर जीते चले जाएंगे, तो वाकई ही फिर जीवन असली रूप में एक मुबारक जीवन है। फिर ये वही जो दासी एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही थी पहले, कि ये बिल्कुल भेड़चाल का रूप नहीं होगा, एक सोच को भी ठीक तरह उपयोग किया जाएगा, मनो के भावों को भी, इमोशंस को भी। तो फिर एक वाक्य में हमारा जो एक यूनिक इस दातार ने हमें गुण से बख्शा है, तो वो एक एक गुण हमारा हम अपने ही तरीके से जीवन जी भी सकेंगे इस निराकार को डालकर बीच में, और फिर वही एक यूनिकनेस से जो ब्लेस्ड हैं उसको दबाना नहीं पड़ेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे एनहांस होंगे, एक हम अपने खुद के इंसान भी बनेंगे और इस दातार से जुड़कर फिर सिर्फ और सिर्फ निखार आएगा। फिर वो सिर्फ बोली भाषा में ही, जो अक्सर सत्संग से हम सुनते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी अपने आप ही मुंह पे बैठ जाती है कि दास दासी हंजी महापुरुषों महात्मा, एक ऐसे मीठे वचन वो सिर्फ एक ऊपरी सिखाई नहीं बनते, फिर वो मन में आते ही अपने आप अपना ही एक गुण बन जाता है। तो जितना ज़्यादा अंत में वही बात दासी ने आज टाइम भी ज़्यादा ले लिया कि कैसे एक निराकार से जुड़ेंगे, तो फिर वाकई ही एक सुधार होना ही है, और वो सुधार अगर हम एक सेकंड के लिए अपना मोटिव छोड़ भी दें सिर्फ इस वजह से कि निराकार से जुड़ेंगे, तो निराकार ही तो सब कुछ है और ये सब कुछ बनना है हमें, क्योंकि इसी की प्राप्ति के लिए हम संसार में आए हैं। और अगर एक सेकंड के लिए भाग छोड़ भी दें, ये बर्थ रीबर्थ को एक सेकंड के लिए साइड छोड़ भी दें, और ये भी अगर मान लें कि चलो कुछ नहीं होती है योनियाँ, कुछ एक साइकिल है नहीं, अभी हम आए हैं, तो इस जीवन को कैसे पूर्णता से जीना है, इसको कैसे पूरे एक एक पल में बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट जीना है, वो तभी संभव होता है अगर निराकार से जुड़े हैं, वरना तो पास्ट की बातें भी याद आती हैं, फ्यूचर की भी एक टेंशन रहती है, पर इसके बीच में ये करंट पल को हम कोई ना कोई और सोच विचार में गवा देते हैं। जब निराकार से जुड़ते हैं तो हर पल इसको महसूस करते हुए कोई कार्य भी करेंगे तो दिशा अपने आप ही सवर जाती है, एक नजरिया अपने आप ही सवर जाता है, बेचैनियाँ खत्म हो जाती हैं, एक सिर्फ और सिर्फ प्यार बनकर ही फिर एक वो चिंता नहीं कि क्या हमारे हाथ में है, कितनी धन दौलत है, कहाँ एक खड़े हैं, जो सपने हैं वो पूरे हुए भी कि नहीं हुए, वो प्रयास तो है, वो भाव है, पर उसके पीछे वो एंशियसनेस नहीं है। एक खुद को अक्सर छोटा भी हम इस वजह से देखना शुरू कर देते हैं कि कोई सपना था पूरा नहीं हुआ, तो हम शायद उतने कैपेबल नहीं है, क्या हो रहा है जीवन में। तो बात वही कि दातार अगर हरेक में है, हरेक का पूरा पोटेंशियल है, अपनी तरफ से वो पोटेंशियल को जीना है, और अगर फिर भी वो चीज़ अचीव नहीं हुई तो वो भी रजा है और उसमें बेचैन नहीं होना है। दाता कृपा करे हरेक पे कि बहुत ही सहज पावन जीवन जो जीने के लिए जीवन मिला है, उनको कोई भी फैक्टर्स फिर वो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना करें, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, उन सब से उठकर ये जो ब्लिस की या आनंद की अवस्था होती है, ये वही होती है कि ना सुख छू पाए ना दुख छू पाए, एक बस अपने मजे में ही जीते रहते हैं सब। उसी तरह ये आनंद के जीवन का हकदार जो हर कोई है, वो पूरे उस हक से अपना जीवन सवारते हुए जिए। सत्संग जी।